శ్రీల ప్రభుపాదకి, శ్రీ శ్రీ రాధా శ్యామ సుందరి లలిత విశాఖదేవికి, శ్రీకృష్ణ బలరామ్కి, శ్రీ గౌరణితాయికి, వైష్ణవ భక్త వృందకి, ఆప్ సబ్కి గౌర్ ప్రేమానంది. మనుష్య జీవన్ కా పరమ చరమ లక్ష్య హై కి హమ్ శ్రీ కృష్ణ కా శుద్ధ ప్రేమ హమారే హృదయ మే సంపూర్ణతయా జాగ్రత్ కరే. తో హమ్ సబ్ ఆత్మాయే హై, జీవాత్మా ఔర్ సమజ్ రహే హై శరీర. తో యే బహుత్ గంభీర్ బాత్ హై, హమ్ ధోఖే మే పడ్ గయే ఔర్ యే బహుత్ బడా ధోఖా హై, హమ్ సమజ్తే నహీ హై. లేకిన్ బహుత్ బడా ధోఖా అగర్ ఆప్కే సాథ్ హమారే సాథ్ హో రహా హై తో యే మాయా కా ఫందా. మాయా హమే హర్ పల్ సమజాతీ హై కి హమ్ యే శరీర్ హీ హై. బహుత్ బడా ధోఖా హై, హమ్ శరీర్ నహీ, హమ్ ఆత్మా హై. తో యే ఆత్మా 84 లాఖ్ యోనియో మే భటక్తే హువే జబ్ మనుష్య యోని మే ఆతీ హై తో ఉన్కా పరమ చరమ లక్ష్య కుచ్ ఔర్ హై. ఆహార, నింద్రా, భయ, మైథున్, శారీరిక క్రియాఓ ఔర్ శారీరిక లగావ్ కే ఉప్పర్ కుచ్ ఔర్ ఉన్కా కర్తవ్య బన్తా హై, ఉత్తరదాయిత్వ బన్తా హై. ఔర్ వో హై కి హమారే హృదయ మే హమారే పరమ పితా పరమేశ్వర శ్రీ కృష్ణ కా శుద్ధ ప్రేమ నిత్య సిద్ధ హై. హమే ఇస్కే లియే జన్మ జన్మాంతర మే యే ప్రేమ హమారే సాథ్ హీ హోతా హై. లేకిన్ సోయా హువా తో మనుష్య జీవన్ మే హీ యే సమజ్ సక్తే హై. ఔర్ మనుష్య జీవన్ మే హీ హమ్ శ్రీ కృష్ణ కా ప్రేమ జాగ్రత్ కర్కే ఉన్సే ప్రేమ కర్ సక్తే హై. ఔర్ కోయి యోని మే నహీ హోగా. ఇసిలియే బహుత్ బడీ జవాబ్దారీ హై. తో యే ప్రేమ జాగ్రత్ కర్నే కే 5 సాధన హమే చైతన్య మహాప్రభు కహ రహే హై కి సాధు సంగ, నామ కీర్తన్, భాగవత శ్రవణ్, మథురా వాస్. ఆప్కా 2 దిన్ వాస్ హువా, యే బహుత్ బడీ బాత్ హై. మథురా వాస్ ఔర్ శ్రద్ధా సే శ్రద్ధాయ శ్రీమూర్తి సేవన్. తో మథురా వాస్ ఔర్ శ్రద్ధాయ శ్రీమూర్తి సేవన్. తో శ్రీమూర్తి సేవన్ మే ఆజ్ ఆప్కో కుచ్ ఆప్కే జీవన్ మే ప్రకాశ్ డాలుంగా ఔర్ చైతన్య ప్రభు, కృష్ణ చైతన్య ప్రభు వో ఆప్కో భాగవత్ కా సేవన్ నిత్యం భాగవత సేవయా యే ఉన్కా విషయ రహేగా. తో 5 మే సే 2 ఆజ్ సిఖాయే జాయేంగే ఔర్ యే 5ో మే సే అగర్ ఏక్ భీ బహుత్ అచ్చి తరహ కరో ఆప్కా కళ్యాణ హో జాయేగా. లేకిన్ 5ో సాథ్ మే కరో తో బహుత్ అచ్చా హై. తో మేరా విషయ రహేగా శ్రద్ధాయ శ్రీమూర్తి సేవన్. తో శ్రద్ధాయ శ్రీమూర్తి సేవన్. తో మూర్తి కీ సేవా మే కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామినే పహలే బహుత్ మహత్వపూర్ణ శబ్ద కా ఉపయోగ కియా, ప్రయోగ కియా. క్యా శ్రద్ధా, శ్రద్ధాయ శ్రీమూర్తి సేవన్. తో సబ్సే పహలే శ్రీమూర్తి శ్రీ విగ్రహ కి సేవా మే బహుత్ శ్రద్ధా చాయే, ఊంచీ శ్రద్ధా చాయే. జిత్ని శ్రద్ధా జ్యాదా ఉత్నా ఊంచా భక్త, జిత్ని ఊంచీ శ్రద్ధా. తో శ్రద్ధా కా దూసరా నామ హై విశ్వాస్. శ్రద్ధా శబ్దే విశ్వాస్ కరే సుదృఢ నిశ్చయ్, కృష్ణ భక్తి కైలే సర్వ కర్మ కృత హై. కైసా, కౌన్సా విశ్వాస్? కి మే శ్రీ కృష్ణ కి భక్తి, పూజా, సేవా, ప్రేమ ये सब भक्ति के दूसरे नाम है, सेवा, प्रेम वगैरह। तो जितना जितनी भक्ति में करूंगा तो वो उसके मुताबिक मेरे सब काम कामयाब होंगे। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो, कृष्ण भक्ति करने से सब काम आपके कामयाब होंगे। उसमें जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी श्रद्धा। तो प्रहलाद महाराज ने एक पिलर में श्रद्धा, पिलर में नरसिंह देव की श्रद्धा करी की, और पिलर में से नरसिंह देव, तो ये श्रद्धा का विषय है। उनके पिता ने पूछा कि क्या आपके विष्णु, आपका विष्णु ये पिलर में है? प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ है, और वो पिलर को तोड़ने लगा तो तुरंत नरसिंह देव। तो ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है। तो श्रद्धा का दूसरा नाम है सबसे ऊंचा विश्वास। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है अर्चे विष्णु शिला वीर गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि सा नारकी सह। तो अर्च विग्रह में, अर्च विष्णु, अर्च विग्रह में विष्णु है ऐसा ऊंचा विश्वास। अर्चे विष्णु शिला वीर, शिला ये विष्णु की मूर्ति है, पाषाण पत्थर पित्तल चित्र मिट्टी वगैरह नहीं है। हमारे आचार्यों ने भगवान को प्रार्थना, गुरु परंपरा में प्रार्थना की जाती है तो भगवान अवतरित होते हैं अर्च विष्णु विग्रह के रूप में। क्यों? कि हमारी आंखों में तकलीफ है, हमारे चेतना में तकलीफ है, इसलिए भगवान हमारे बराबर बनने के लिए पाषाण पत्थर में अवतरित होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा, प्राण भगवान के प्राण मतलब भगवान खुद, उनके प्राण और उनमें कोई भेद नहीं है, खुद है। उनके प्राण और शरीर में, कृष्ण के प्राण और शरीर में, उनके आत्मा में और उनके शरीर में भेद नहीं है। उनका शरीर भी सच्चिदानंद, उनका आत्मा प्राण भी सच्चिदानंद, एब्सोल्यूट वन एंड नॉन डिफरेंट। तो भगवान ये सब कुछ है, भगवान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। कृष्णा इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्णा। भगवान सब कुछ है, इसलिए भगवान सब कुछ है, इसलिए भगवान सब कुछ में रहते हैं और वहां प्रकाशित भी हो सकते हैं। सब कुछ में रहते हुए सब कुछ में प्रकाशित भी हो सकते हैं, लेकिन प्रकाशित करने की शक्ति हम में होनी चाहिए, श्रद्धा विश्वास। तो प्रकाशित करने की शक्ति हम में होनी चाहिए। तो अर्चे विष्णु शिला वीर, विष्णु भगवान की जो मूर्ति है कृष्ण की, वो कृष्ण ही है, तनिक भी भेद नहीं, मूर्ति और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। मेरे एक शिष्या के यहाँ गया तो उनका पति मुझे कहते हैं मूर्ति में हम नहीं मानते, मेरी ये नहीं मेरा वो नहीं, जैसे सनातनी होते हैं दयानंद सरस्वती के फॉलोअर, मार्य समाजी, सनातनी, सार्य समाजी, मायावाद लोग, कहीं कहीं 95% लोग मायावादी हैं। मायावादी का अर्थ है कि भगवान की मूर्ति ये माया है, हमारा शरीर माया का बना है और भगवान का शरीर भी माया का है, भगवान की क्रियाएं लीलाएं मूर्ति ये सब माया है, ऐसा मतलब भगवान हमारे बराबर है, मैं भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं, भगवान मर गए और मैं रह गया, ये फिलोसफी, ये मायावाद है। तो मूर्ति ये माया नहीं है, मूर्ति ये मोहन है, साक्षात मोहन, नन अदर। क्यों? मायावादी क्या कहते हैं, भगवान सब जगह है, हाँ है और है ही। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो फिर मंदिर में नहीं, अगर मंदिर में भी है तो मूर्ति में नहीं। आप बोलते हो सब जगह है तो मूर्ति में कैसे नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं सब जगह है मूर्ति में नहीं, सब जगह है मंदिर में नहीं। तो बुद्धों की थियरी है, हम बुद्धों के पीछे हैं डंडा लेके। भगवान सब जगह है तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं? भगवान सब जगह है, हाँ ये जन्म नहीं ले सकते। अरे भगवान की परिभाषा ये है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, हाँ सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जन्म नहीं ले सकते। भगवान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जन्म नहीं ले सकते, तो ये बुद्धों की थियोरी है। गॉड इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट गॉड, ये वैष्णव सिद्धांत। तो भगवान चाहे तो मूर्तिमंत हो सकते हैं, वो उनकी मर्जी और हमारी श्रद्धा की विश्वास की मर्जी, हमारी मर्जी और उनकी मर्जी। तो मूर्ति ये साक्षात कृष्ण, और आप जितनी श्रद्धा विश्वास से उनके साथ व्यवहार करोगे इतना आपके साथ वो व्यवहार करेंगे। हमने देखा भी है जैसे मदन मोहन और सनातन गोस्वामी, साक्षी गोपाल, रघुनंदन आचार्य, रघुनंदन लाडू खाते हैं 3-4 लाडू वगैरह वगैरह, लेकिन हमारा भाव बहुत ऑर्डिनरी बात है। आपके घर मेहमान आए तो आपके भाव के मुताबिक वो प्रकाशित होंगे। आप डंडा लेके करने लगोगे तो मेहमान कोई नहीं आएंगे, और श्रद्धा से आओ खाओ पाओ बैठो वगैरह वगैरह, तो ये आपका भाव, वो भागेंगे या तो आएंगे। तो उसी तरह भगवान भी जितना भाव बताओगे इतना भगवान आपके पास आएंगे। भावग्राही जनार्दन, भावग्राही भाव को ग्रहण करते हैं जनार्दन। तो अपने निजी मंदिर में, घर में जब मंदिर हम एस्टैब्लिश करते हैं तो उनके लिए एक अलग कमरा हो तो बहुत अच्छा है। अगर कमरा नहीं है तो घर में सबसे अच्छा स्थान है बीच में, इसलिए कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु भगवान एक घर में लेटते हैं, इसे ईशान खूने में उनका सर होता है और पांव उधर होते हैं ऑपोजिट, और बीच में उनका हृदय, जैसे आप लेट जाओगे इसे आपके घर में तो आपका हृदय जहां आता है वो हृदय पर भगवान का स्थान होना चाहिए। तो ये बेस्ट, ये सबसे अच्छा भगवान का स्थान है आपके घर में। और वहाँ मंदिर बनाओ अगर आप, तो मंदिर में आप कितना भी पैसा खर्च कर सकते हो, 1,00,000 रुपया, 80,000, 50,000, मेरा जो देखा आपने वो 1,00,000 रुपया का है। तो आपका छोटा हो सकता है, इतना बनाओगे कोई हिसाब नहीं, जितना आप कार्विंग वगैरह वुड, और उसमें आप बैठे बैठे सेवा करोगे, खड़े खड़े करोगे, या तो दोनों से करोगे, कैसे क्या होगा उसके मुताबिक उनकी हाइट आप रख सकते हो। और मंदिर के पराफनेलिया रखने के लिए साधन, जैसे उनके श्रृंगार हैं या मृदंगा है, भागवत है, गीता है, कहाँ रखोगे कैसे रखोगे, बिल्कुल व्यवस्थित। सुप्रीम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं टॉप मोस्ट क्लीनलीनेस होनी चाहिए, एवरीथिंग सब कुछ पक्का होना चाहिए, कच्चा कुछ नहीं चलेगा पक्का। तो स्टेप भी 3 स्टेप रखो तो अच्छा है। ऊपर वाले स्टेप में आप मूर्ति, आपकी सेव्य मूर्ति, आपके इष्ट देव एक रखो, मूर्ति का सेट एक सेट रखो। अगर आप में बहुत समय है, रिटायर हो या तो कुछ पैसा कमा चुके हो या तो बाप दादा इनहेरिटेंस कुछ वारसागत मिल चुका है, कुछ और कुछ काम नहीं है, तो आप ज़्यादातर मूर्ति रखो, 1 पैर नहीं तो 2 पैर, अगर ज़्यादा शक्ति है सेवा करनी तो 3री पैर, 3, तो 3 से कुछ और ज़्यादा नहीं, 3 इज ए मैक्सिमम सेट। पहले तो मैं कहूँगा और सजेशन रखूँगा कि एक मूर्ति का सेट रखो, चाहे वो गौर निताय हो, राधा कृष्ण हो, सीताराम लक्ष्मण हनुमान हो, लक्ष्मी नरसिंह देव हो, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी विष्णु, लक्ष्मी नारायण हो या कोई भी विष्णु तत्व हो, गोपाल जी वो भी बात कर ही लेते हैं। अभी गोपाल जी की बात आई, हमारा संप्रदाय में वैष्णव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय, श्रील प्रभुपाद जी का संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में सब संप्रदायों का भाव अलग अलग होता है। वैष्णव संप्रदायों में भी, हालांकि हम वैष्णव संप्रदाय होते हुए सब वैष्णवों के बीच में से, वैष्णवों के साथ में, ऐसा नहीं कि हमारा वैष्णव संप्रदाय ऊंचा और अलग, ऐसा नहीं है, हम सब वैष्णव एक हैं। लेकिन उनमें भी जैसे कि एक बाप के 10 बेटे हो तो 10 बेटों का माता पिता की ओर अलग अलग भाव होता है। कोई सेवा भावी होता है, कोई कमा के लाता है, कोई खिलाता है, कोई ये करता है, कोई वो तो वैष्णव संप्रदाय में कहीं कहीं अलग अलग भाव भगवान के साथ होते हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि ये आपका भाव है वो गलत है, या गलत है या तो निम्न कक्षा का है, लेकिन हमारे भाव की तो बात हम कर ही सकते हैं, है ना। तो जैसे रामचंद्र के साथ भाव है वो अलग दास्य भाव, वो नारायण लक्ष्मी नारायण, तो वहाँ ऑ एंड रेवरेंस का हिंदी मतलब बहुत बड़े राजा है, मैं उनका बहुत बड़ा गरीब छोटा सा, तो ऐसे डिस्टेंस रहता है राजा राम और मैं दासों का दास, तो उसमें क्या रहता है, बहुत बड़ा फासला रहता है। तो फासले में प्रेम नहीं होता इतना जितना हमारे संप्रदाय में हो सकता है। प्रेम बराबरी में होता है, प्रेम बराबर होते हैं उसमें ज़्यादा, जैसे कि प्रेमी और प्रेमिका बराबर, ऐसा नहीं वो एक बूढ़ी है और वो बच्चा है, ऐसा नहीं होता। मित्रों में प्रेम होता है, बराबरी में होता है। शादी होती है, ऐसा नहीं कि वो गांव में काम करने वाली और यहाँ लाखोंपति दोनों के, ऐसा नहीं होता। प्रेम, प्रेम का एक सिद्धांत है कि बराबरी, गोपी और कृष्णा बराबर, ग्वाल बाल बराबर, उसमें विषमता नहीं है उच्चतम या। तो ये रामचंद्र नारायण लक्ष्मी नारायण का मूड है सेवा का, कि बहुत बड़े ऐश्वर्य के मालिक और मैं छोटा सा। और लड्डू गोपाल जो हैं उसमें वात्सल्य भाव है कि वो छोटा मेरा बालक है, खेल बेटे, और यू नो उनको लड्डू दिया, प्यार मिठाइयाँ बच्चों को अच्छी लगती हैं, तो मिश्री माखन मिश्री, वहाँ रोटी का भाव नहीं आता ज़्यादातर, ऑफरिंग करते हैं लेकिन लड्डू गोपाल का अर्थ है कि छोटा बच्चा और लड्डू खाएगा स्वीट, तो वहाँ भी अच्छा भाव है कि मैं उनका पिता हूँ और ये मेरा बेटा है, मैं नहीं खिलाऊंगा तो वो भूखे मर जाएगा, वगैरह वगैरह भाव है। तो उससे भी आगे बढ़े हम तो माधुर्य रस जो है वो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इसलिए बहुत कड़ा शब्द कहते हैं कि ये 60 व्यक्ति हैं जो अकेले कृष्ण की उपासना करे, पूजा करे, 60 व्यक्ति है। क्या कहते हैं एग्जैक्ट शब्द आप, तो मैं बताता हूँ। छठवा स्वनियम दशकम का ये छठा श्लोक है, 6 श्लोक। श्री नारद मुनि और मुनि गणों द्वारा एवं समस्त वेदादि शास्त्रों द्वारा श्री राधिका जी श्री कृष्ण की सर्व प्रधाना प्रियतमा घोषित की गई है। उनका अनादर कर जो कपटी व्यक्ति दम्भ पूर्वक अकेले श्री गोविंद का भजन करता है, मैं उस शुष्क नीरस व्यक्ति के पास एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं जाऊंगा, यह मेरा दृढ़ व्रत है। तो श्री राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वोत्तम प्रेयसी हैं, राधा रानी के बिना श्री कृष्ण की जो प्रधाना शक्ति है, तो उसके बिना कृष्ण की जो उपासना करते हैं खाली गोविंद की, तो ऐसे सठ व्यक्ति, क्या शब्द दिया है यहाँ, कपटी। यह एकम गोविंदम भजति कपटी धाम्बिकतया तदभ्यरणे शीर्णे क्षणम अपि न यामी व्रतम इदम। मेरा ये व्रत है सठम और दम्ब। तो जैसे हम देखते हैं रुक्मिणी दूर है, द्वारकाधीश अकेले खड़े हैं, और रणछोड़ राय अकेले हैं, या तिरुपति बालाजी, पद्मावती कहीं और हैं, और तिरुपति बालाजी अकेले की छवि की पूजा करते हैं। तो भक्त सहित भगवान की उपासना होनी चाहिए, भक्त के साथ। राधा रानी भक्त हैं, लक्ष्मी जी भक्त हैं, हनुमान जी भक्त हैं, लक्ष्मण वगैरह, सीता रानी, भक्त सहित। और आजकल तो ज़्यादातर बाबा की भूपा, बाबा की पूजा होती है, और बाबा के मंदिर शुरू हो गए हैं गलियों में, घरों में, मुस्लिम बाबा, इसलिए हम हिंदू हैं तो मुस्लिम बाबा को पीछे राम लगा देते हैं, तो बाबा राम हो गए, जो बाबा हुआ, तो बाबा राम हो गए, बापू राम हो गए, बाबू राम हो गए। मत बोलो, नाम देने की जरूरत क्या है। हमारा बिजनेस ये नहीं कि किसी का नाम लेके हम कोई यहाँ कहीं भक्त होंगे, इनको हर्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये शास्त्र युक्त बात नहीं है, है ना। श्री कृष्ण ही भगवान है, हमारे संप्रदाय की बात कर रहे थे। तो हमारा भाव है कि बराबर, कृष्ण के बराबर हम, और कृष्ण हमारे बराबर। तो बराबर में प्रेम ज्यादा होता है, प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंचना है तो बराबर। इसलिए प्रभुपाद जी कृष्ण बोलते हैं, मुझे भी आदत थी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, अभी भी मैं बोलता हूँ, लेकिन कृष्ण। तो कोई कहते हैं तो हमारे घर का बंदा है, तो ये बराबर ही भाव है ना, ये हमारे घर का बंदा है। यहाँ जसोदा नंदन एक दिन गए वृंदावन में बाजार में, तो वहाँ गणपति और कृष्ण मूर्ति थी, तो ब्रजवासी आया और गणपति की पूजा की सुंदर, और बाजू में कृष्ण थे, तो उनको कोई ध्यान नहीं दिया और चले गए। तो बोलते हैं आपने ब्रजवासी होके गणपति की पूजा की और कृष्ण की तो कुछ। तो ब्रजवासी कहता है क्या कहता था जसोदा नंदन, है कौन था, कोई था ना। तो बोलते हैं तो ये तो हमारे गांव का है, ये तो हमारे गांव का है। तो ये व्रज भाव है, ये रागानुग रागात्मिका भक्ति, कि ये तो हमारा ही है, ये कहाँ जाने वाला है, इनने तो हमें बांध के रखा है ना, वो कहाँ जाएगा, गणपति चले जाएंगे, लेकिन ये कहीं नहीं। तो हमारे संप्रदाय में भाव ये है कि माधुर्य भाव, माधुर्य भाव का अर्थ है कि स्त्री पुरुष का प्रेम आपस में, और उसमें भी विप्रलंब सेवा, और उसमें भी पराकीय भाव। पराकीय भाव का अर्थ है, ये मूर्ति पूजा का विषय नहीं था मेरा, लेकिन हम कुछ और जगह चले गए हैं, चलने दो, है ना। तो पराकीय भाव, पराकीय भाव का अर्थ है कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका दोनों एक दूसरों से अखुट प्रेम करते हैं। तो प्रेमी परदेश चला गया, तो प्रेमिका उनके विरह में उनके प्रेम का आस्वादन करती है, विरह में हर पल उनके चेतना में, मन में, हृदय में अपने प्रेमी के लिए हमेशा वो याद करती रहेगी, रोती रहेगी, रोता रहेगा जो भी, तो उसमें प्रेम की तीव्रता बढ़ जाती है। तो उसको बोलते हैं पराकी अभाव। तो उनके आचार्य हैं, पराकी अभाव के आचार्य कौन है हमारे, कौन है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं। रूप गोस्वामी भी हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये ज्यादातर उनको बाहर लाए, विप्रलंब पराकी अभाव। तो माधुर्य रस, माधुर्य रस में राधा और कृष्ण बराबर हैं, राधा रानी ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा रानी, दोनों कोई बंसी राधा रानी बंसी बजाना और कृष्ण चुन्नी पहन लेते हैं या तो कुछ, बराबरी में सब श्रृंगार रस, श्रृंगार रस मतलब कि जो कुंज निकुंज है, निकुंज तो निकुंजों में राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं, अंतरंग लीलाएं, नित्य लीलाएं चलती रहती है। तो उसमें उन दोनों की सेवा के लिए मंजरियां, 12 साल की, 10 साल की मंजरियां, छोटी सी मंजरियां सेवा करने के लिए कुंजों में आती जाती रहती है। कितने किस्म की सेवा है, करोड़ों किस्म की सेवा। कोई किसी की सेवा है उनको डिजाइन करना, उनके फेस बनाना, उनके पाँव में डिजाइन करना, किसी की कपड़ों की सेवा है, किसी की सैया बनाने की, झूला बनाने की, चंदन अगरू वगैरह, कस्तूरी की, कोई कस्तूरी चंदन अगरू ले जा रही है, कोई चामर डुला रही, कोई पंखा कर रही है, कोई कई कई किस्म, कोई पान बीड़ा दे रही है, कोई खाना पका रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कई कई किस्म की सेवाएं। तो ये मंजरियों का काम है। तो ये मंजरी, ये मंजरी, ये हमारे गोस्वामियों का भाव है हमारे संप्रदाय में। ललिता ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद आज्ञाए करि सेवा चरणार विंद। ललिता विशाखा यादि यत सखी वृंद, जो ललिता विशाखा यादि जो सखी वृंद है उनका, उनकी सेवा से। मंजरी तो मैंने समझाया आपको, मंजरिया ये सखी की सहायिका, सहायता करने वाली, सेवा करने वाली। सखी, सखियां भी कई हैं, राधा रानी की 8 सखियां और 16 सखियां और उनके नीचे सब मंजरियां। तो हमारे सब जो गोस्वामी गण हैं ये सारी मंजरियां हैं। रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, विलास मंजरी, सनातन गोस्वामी कौन सी मंजरी हैं, विलास मंजरी शायद, और रघुनाथ दास गोस्वामी राग मंजरी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी मंजू लाली मंजरी हैं, वगैरह वगैरह सब गोस्वामी मंजरियों का अवतार है यह वाइस वर्षा। तो यह मंजरी भाव से सब गोस्वामियों ने श्री कृष्ण की सेवा की, राधा कृष्ण की सेवा की। तो ये हमारी मूर्ति पूजा, राधा कृष्ण की हम सखी भावे या मंजरी भावे, स्पेशली मंजरी भाव से हम सेवा करेंगे। और कैसे, डायरेक्ट नहीं, ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद आज्ञाए करीबो सेवा चरण अरविंद, उनकी आज्ञा से, उनकी आज्ञा से हम सेवा करेंगे। किसकी सेवा? राधा कृष्ण की। क्यों? कि इन सेवा में, राधा कृष्ण की सेवा में, भाव में हमें माधुर्य भाव, रागात्मिका भक्ति और उसमें भी पराकीय भाव से भाव हमारे लिए उपलब्ध है। ये राधा कृष्ण की सेवा में हमें सबसे ऊंचा जो भाव है, पराकीय भाव से रागात्मिका भक्ति में माधुर्य रस का जो भाव है, वो भाव हमें उपलब्ध है। अगर आपको कृष्ण की सेवा लक्ष्मी नारायण के रूप में करनी है तो रुक्मिणी द्वारकाधीश के भाव में कर सकते हो। तो ये हमारा भाव है, इसीलिए हम राधा कृष्ण गौर निताय आप रखो, ठीक है। तो मूर्ति ये सेट आप रख सकते हो, और ज़्यादातर आपके जो गुरु हैं, आपके आचार्य जो हो, उनसे अनुमति लेनी चाहिए और उनसे ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कि उनसे ही एस्टैब्लिश करवाना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो ऑफिशिएट कर सकते हैं, ऋत्विक सिस्टम कि कोई ये आएंगे, कोई भक्त आएंगे तो वो सब सेरेमनी कर देंगे और मैं आऊँगा तो मैं ये कर दूँगा और आप सेवा शुरू करो, तो ये भी हो सकता है। तो लड्डू गोपाल का भाव आप जाने, लेकिन हमारे संप्रदाय में राधा कृष्ण गौर निताय ज़्यादातर भाव ये है। तो मंदिर की बात मैंने कही थी, 3 स्टेप आप रख सकते हो, और 3 स्टेप में पहले ऊपर वाले स्टेप में हमारे इष्ट दीटी गौर निताय हो, राधा कृष्ण हो या वगैरह वगैरह, और निचले वाले 2nd स्टेप पे आप देवी देवताओं को रख सकते हो। हालांकि प्रभुपाद जी ने तो इतना प्रभुपाद जी ने तो देवी देवताओं की पिक्चर तो मूर्ति मंदिर में मना नहीं किया, लेकिन बस सिंपल रखो। याद आपको अगर बहुत ऊंचा भाव है, श्रद्धा है, बहुत ऊंची श्रद्धा है, तो सब देवी देवताएं श्री कृष्ण भगवान में मौजूद हैं, और आपके गुरु में भी सारी देवी देवताएं मौजूद हैं। सर्वदेव मयो गुरु, गुरु ए सर्वदेव मयो गुरु, आचार्य माम विज्ञानियम नव मन्यत करहचित, आचार्य माम विज्ञानियम नव मन्यत करहचित, न मर्त्य बुद्धि असूयत, सर्वदेव मयो गुरु। गुरु इज सम टोटल ऑफ ऑल डेमिगॉड्स। तो आपके सब देवी देवताएं 33 करोड़ वहाँ कृष्ण भगवान में भी मौजूद हैं और आपके गुरु में भी मौजूद हैं, सर्वदेव मयो गुरु। तो ऐसा नहीं हम कहते हैं कि सब देवी देवताओं को हटा दो, सब देवी देवता नहीं चाहिए, सब देवी नहीं, उनको हम रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा फोकस राधा कृष्ण है। हमारा फोकस जो है वो है राधा कृष्ण। तो मिडल में आप सब देवी देवताएं अगर रखना चाहें, और नीचे वाले स्टेप में गुरु परंपरा, आपके गुरु से लेके 4 गुरु तक 5 गुरु तक सब पिक्चर रखने चाहिए। तो ये नीचे, तो ऐसे मंदिर का सेटअप होना चाहिए, पीछे सुंदर बैकड्रॉप होनी चाहिए, बैकड्रॉप सुंदर, और आप बदल भी सकते हो बैकड्रॉप, पीछे जो कपड़ा होता है उनको बैकड्रॉप बोलते हैं, और पर्दा भी होना चाहिए। अगर रूम का दरवाजा है, अलग रूम है, तो पर्दा ना हो फिर भी चलेगा, क्योंकि दरवाजा आप बंद कर लो भोग लगाते समय या सेवा के समय, सेवा करते समय अकेले सेवा करनी चाहिए, दूसरे कोई, भोग लगाते समय भी अकेले भोग लगाओ, दूसरे न हो, सेवा करते समय भी बोलो हरे कृष्णा, सेवा करते समय भी आप खुद अकेले सेवा करो, क्योंकि ये मेडिटेशन खूब ध्यान, हमारा सारा ध्यान सेवा में होता है। आप जो भी सेवा करते हो आपको अनुभव होगा कि टोटल इमर्जन इनटू कृष्णा, बिल्कुल ध्यान इसमें रहता है। और मूर्ति पूजा करने से प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि मूर्ति करने से आपको रागात्मिका भक्ति आपके हृदय में जागृत होगी, जो सबसे ऊंची भक्ति है रागात्मिका। आपको इतना अटैच, आपको मूर्ति से इतना लगाव हो जाएगा कि आप उनसे बातें करने लगोगे, आप उनको उनसे अनुमति लेने लगोगे, उनसे बुद्धि लेने लगोगे, उनसे सब व्यवहार पर्सनल व्यक्तिगत व्यवहार करने लगोगे। रागानित्मा आपको, जैसे आपका छोटा बच्चा होता है तो उनको हर जगह ले जाते हो, तो ये अगर आउटिंग कोई बाहर गांव जाते हो साथ में ले जा सकते हो, उनकी देखभाल, खाया नहीं खाया, नहाया स्नान किया नहीं किया, सब आपका हमेशा ध्यान उसमें मूर्ति में रहेगा, मूर्ति में। और उसको यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हमारी चेतना, हमारा ध्यान कृष्ण में हो। कृष्णेर मतिर अस्तु, ये आशीर्वाद है। वैष्णव आशीर्वाद क्या देते हैं? कृष्णेर मतिर अस्तु, आपकी मति कृष्ण में हो हमेश। तो जब मूर्ति पूजा करते हैं तो हमारी मति, गति, बुद्धि, मन, सब कुछ एकत्रित मूर्ति में एकत्रित हो जाता है। आप मूर्ति पूजा करो तो आपको अनुभव होगा है। और इसीलिए ही वो मूर्ति से आप बहुत मूर्ति से लगाव हो जाता है, और बाद में वो लगाव ही रागात्मिका भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। उनके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते, वगैरह वगैरह। मैं उदाहरण दे रहा था कि मैं एक शिष्य के घर गया था, तो वो, मैं मूर्ति पूजा में नहीं मानता, वो तो पत्थर हैं, पाषाण हैं वगैरह। तो मैंने, उनकी बेटी थी वहाँ खड़ी बैठी थी, मैंने बोला पापा का पिक्चर ले आओ बेटे। तो पिक्चर ले आई, मैंने कहा इनके ऊपर थूको अभी। नहीं, ये तो मेरे पापा हैं। अरे ये पापा कैसे हो गए? पापा तो बैठे हैं वहाँ, और पिक्चर पापा कैसे हो गए? नहीं, ये तो मेरे पापा हैं। तो पिक्चर है कि पापा है? वो क्या कह रहे हैं? मेरे पापा है। तो ये भाव है, मूर्ति, ये पत्थर पीतल, ये कृष्ण है, ये मेरे इष्ट है, ये मेरे सब कुछ है। ऐसा नहीं कि मूर्ति है। पिक्चर पर, आपके पापा के पिक्चर पर कौन थूकेगा? हाथ खड़ा कीजिए। तो उसका मतलब कि पापा का भाव उसमें है, पिक्चर में पापा का भाव है कि नहीं है। तो उसी तरह मूर्ति में भी भाव नहीं, साक्षात कृष्ण ही है। तो इनके मूर्ति के साथ जितना व्यवहार करोगे इतना होगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मूर्ति पूजा, तो पहले तो आपको पूजा अर्थ है पूजा करना, तो 5 उपचार से पूजा होती है, 16 उपचार से भी पूजा होती है, और 64 वगैरह वगैरह उपचार से भी पूजा होती है। बड़े बड़े मंदिरों में 16 उपचार से होती है। हमारे यहाँ मंदिर में छोटे जो ठाकुर जी हैं छोटी उत्सव मूर्ति, उनका उनकी पूजा 16 उपचार से होती है। तो पांच घर में ज्यादातर पांच उपचार से ही हो, पांच उपचार ये हैं कि दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती, फूल, फूल फल। तो पांच उपचार से आप सेवा कर सकते हो। और जो भी सेवा आप शुरू करो तो वो सेवा का स्टैंडर्ड आपको हर हालत में रखना चाहिए। उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। इसीलिए ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ाओ मत। जैसे हम नए भक्त थे तो हम 6 बार आरती, आरती नहीं 6 बार भोग लगता था और तुलसी भी बड़ी बड़ी, और हम क्या नहीं करते थे, सब कुछ करते थे। हम नीचे सो जाते थे, प्रभुपाद जी फ्रीकिंग यू नो इट्स लाइक ए फ्रीक डिवोटीज, पागलपन यू नो, पागलपन, टोटल पागलपन। लेकिन ठीक है, पागलपन भी अच्छा पागलपन है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इमिटेशन ऑफ ए गुड थिंग इज ऑल्सो गुड। तो 6 बार आपको ये भोग वगैरह नहीं लगाना है, सुबह शाम करो। अगर ज़्यादा भक्ति है आपकी, आपके समय के मुताबिक काम करो। लेकिन जो करोगे वो करना ही पड़ेगा स्टैंडर्ड। तो कम से कम स्टैंडर्ड कम से कम से शुरू करते हैं। अगर आप, आपके पास आइडियल एग्जांपल भी लेना पड़ेगा कि सपोज आप काम करना करते हो, 8 घंटा काम करते हो, पत्नी भी करती है और बाल बाल बच्चे स्कूल को जाते हैं, घर खाली हो जाता 8 घंटा, है ना। कईयों को ऐसा होता है, स्पेशली पाश्चात्य देशों में तो होता ही है। तो वो सुबह आप भगवान को जगा दिए और जगाने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट मिल्क, जो भी ड्राई फ्रूट स्पेशली या फ्रूट जो भी सामर्थ्य है, और कर दिया बस, इंसेंस जला दो, कुछ भी स्टैंडर्ड बनाओ कुछ। और शाम को सारा प्रोग्राम 20-25 आधा घंटा में, 20-25 मिनट का आधा घंटा का आरती, ऑफरिंग, प्रसाद ऑफरिंग, बाद में आरती, बाद में थोड़ा सा कीर्तन, बाद में भगवद गीता या भागवत का थोड़ा सा अध्ययन, और बाद में थोड़ा कीर्तन, प्रसाद पाओ, तो ये हो गया। और अभिषेक करना है तो वो भी आपके सामर्थ्य के मुताबिक। गौरनीता है तो आप उस वीक में एक बार कर सकते हो, हर रोज भी कर सकते हो। राधा कृष्ण है तो हर रोज करना ही पड़ेगा। और ऑफरिंग भी सुबह शाम करनी पड़ेगी, अलग अलग मूर्तियों की अलग अलग बात भी करेंगे। तो गौरनीता इसलिए कि 80% आपके अपराध, ये कलयुग के भगवान है इसलिए आपके अपराध माफ कर देते हैं। लेकिन राधा कृष्ण में मूर्ति अपराध ज़्यादातर टाइट है, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण वगैरह, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, तो इसमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा आपको। तो हर रोज आप अभिषेक कर सकते हो, या तो वीक में एक बार कर सकते हो, या तो एकादशी के दिन कर सकते हो। गौरनिताई दीटी बहुत कृपालु है, उनका आप सेवा आपके सामर्थ्य के मुताबिक कर सकते हो। लेकिन राधा कृष्ण, आप अगर एक घर में हैं और दूसरा काम जाता है, या तो दोनों रिटायर हैं, तो राधा कृष्ण आगे जाते हुए बढ़ा सकते हो आप। और इससे भी आगे बढ़ाना है तो थर्ड ऑल्टर भी बना सकते हो अगर आपके साथ ज़्यादा फुर्सत है। लेकिन मैं आपको रेकमेंडेशन करूँगा, सुझाव, हाँ मैं सुझाव दूंगा, सुझाव दे सकता हूँ कि पहले आप गौरनिताई से शुरुआत करो और आपका खुद का स्टैंडर्ड, और बाद में अगर घर को कोई एक सदस्य रहता है तो राधा कृष्ण से शुरुआत कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और पंचतत्व का पिक्चर और लक्ष्मी नरसिंह देव का पिक्चर, कई चीज़ें हैं। आप इंडिविजुअली आप आपके गुरु से कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका भाव भी अलग अलग होगा, इसलिए स्टीरियोटाइप है नहीं, सबका सब अलग अलग सेटअप, काम, कोई स्कूल में जाता है, कोई काम करने जाते हैं, कोई ये है, कोई वो है, कोई भोग सिंगल रामचंद्र की माफक सिंगल आदमी है, कोई तो खाना नहीं भी पकता है, कहाँ है रामचंद्र, पीछे बैठे थे, तो ऐसे सिंगल भी कोई होता है तो खाना नहीं भी पकता हो, बंदर में चल जाता है या कुछ कर जाते हैं, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग हिसाब किताब होता है, डिस्कशन करना चाहिए। तो आगे आपको कैसे सेवा करनी चाहिए, स्पेशली आरती, तो आरती कैसे करोगे कि सपोज गौर निताय है और राधा कृष्ण भी है, तो आप शुरू करो आप आरती करना, एक तो नीचे से ऊपर करते हैं आरती और दूसरा ऊपर से नीचे करते हैं, दोनों सही है, लेकिन यहाँ ये मंदिर में हम ऊपर से नीचे करते हैं, मतलब कि कृष्ण से शुरू करते हैं, राधा रानी, बाद में चैतन्य महाप्रभु, बाद में नित्यानंद, बाद में तुलसी, तुलसी देवी, और बाद में षट गोस्वामी, बाद में जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, प्रभुपाद और वर्तमान आचार्य, इसको ऊपर से, और नीचे से आपके गुरु प्रभुपाद, बाद में षट गोस्वामी, पंच तत्व, राधा कृष्ण, बाद में आखिरी में कृष्ण। तो उसका अर्थ यह है कि आपके गुरु अगर उनको आरती करोगे तो वो नेचुरली है कि वो कृष्ण को बोलो हरे कृष्ण, तो स्वाभाविक है प्रभुपाद जी को हम आरती करेंगे तो प्रभुपाद जी आरती आगे करेंगे, आगे आगे करेंगे, आगे वाला आगे करेंगे, खुद नहीं लेंगे तो कृष्ण तक आरती पहुंच जाएगी, है ना? ऐसा नहीं कि हम प्रभुपाद जी को करेंगे तो प्रभुपाद जी स्वीकार लेंगे, नहीं, प्रभुपाद जी क्या करेंगे आगे, तो इसलिए अच्छा है कि आप ऊपर से ही शुरू करो, है ना? तो ये सीक्वेंस है आरती की, ऊपर से कृष्ण से शुरू करो, पहले आपके गुरु की अनुमति लो, तो आरती की शुरुआत आपके गुरु से अनुमति लो और बाद में कृष्ण से शुरू करो। तो आरती करने में अलग अलग पैराफर्नेलिया होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब जो दीक्षित हो वो सब ये सब पैराफर्नेलिया सामग्रियाँ, सामग्री, साधन सामग्री, मैंने अच्छा कर दिया अनुवाद, साधन सामग्री, साधन भी सामग्री भी, तो साधन सामग्री आप रखो, जैसे कि शुरुआत करोगे आप फूकने वाला शंख, तो वो भी अच्छा होना चाहिए, 400 रुपये के ऊपर, अभी 400 से कम नहीं मिलता, ठीक है, सबके घर में होना चाहिए। और शंख के बाद आती है इंसेंस, और उससे पहले आता है मोमबत्ती, माचिस, तो मोमबत्ती हो शायद लेकिन माचिस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लाइटर, क्योंकि माचिस से सारी माचिस से और उनका राख वगैरह गंदा होता रहता है, और गैस लाइटर से थोड़ा सा क्लीनलीनेस ज़्यादा रहेगा, इसलिए गैस लाइटर ज़रूरी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिवोशन बता रहा हूँ, गैस लाइटर, ओके, तो वो गैस का लाइटर नहीं जिसमें गैस हो, लाइटर में जो भी सिगरेट वाला लाइटर आता है ना सिगरेट चलाने के लिए, ये बात है, तो हाँ उनको स्पिरिचुअल बना दो, स्पिरिचुअल लाइटर, तो लाइटर रखो, तो बाद में आपको इंसेंस चाहिए, और इंसेंस भी आप रखो तो एक चाहे एक जलाओ, 3, 4, 5, 10, 15 इंसेंस जलाने की ज़रूरत नहीं है, एक जलाओ लेकिन सुंदर इंसेंस हो, ऐसे जलाओ जो ताकि यू नो सूथिंग इंसेंस, तो इंसेंस भी एक होती है या 3 होती है या 5 होती है, ठीक है। और इंसेंस के बाद आता है घी लैंप, घी लैंप ये एक विक का होता है या तीन का या पांच का, ज्यादातर एक का या पांच का, ठीक है। तो आपके सामर्थ्य और जो भी मुताबिक आप रखो, और जो वीक होती हैं वो भी एक वीक से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब घी में रख के लोग महीना तक रखते हैं और घी भी स्टेल हो जाता है, ऐसा नहीं। फसला तो वो है कि हर रोज़ आप घी में घी वीक बनाओ, लेकिन नहीं तो एक वीक तक आप रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर नहीं। ओल्ड घी, घी भी सुंदर घी होना चाहिए, चाहे एक घी एक वीक हो। वीक का मतलब है बत्ती, चाहे एक बत्ती हो कोई बात नहीं, एक बत्ती बहुत है, लेकिन सुंदर फ्रेश नाइस शुद्ध घी। तो पांच दिया, दिया के बाद आती है पानी, तो पानी का संख होता है मीडियम, इतना बड़ा सा पानी का संख होना चाहिए, मतलब इतना सारा पानी नहीं, इतना लेंथ पानी का संख, इतना या थोड़ा बड़ा भी हो लेकिन इससे छोटा नहीं पानी का संग। कभी कभी अभिषेक करते हो तो अभिषेक का संग भी आता है, बड़ा कांच लक्ष्मी संग आता है, या तो सिंपल संग भी चलता है। तो ये अभिषेक के लिए थोड़ा बड़ा रखो, ठीक है ना। तो ये संग हो गया, ऑफरिंग वाला अलग होता है, और संग के बाद आता है नैपकिन। तो नैपकिन भी बहुत स्वच्छ होना चाहिए, गंदा नहीं, और अगर गंदा दिखाई देता है धोने पर भी तो उनको डिस्कार्ड कर दो, दूसरा नया लाओ। नैपकिन बहुत सस्ते होते हैं, तो नया, और वो भी कॉटन का ही होना चाहिए, सिंथेटिक मटेरियल नहीं। और आपके कपड़े भी सारी, जब भी डिवोशनल गैदरिंग में जाओ तो सारी कॉटन या सिल्क, दो किस्म की, सिंथेटिक नहीं, प्रभुपाद जी का नियम है। और ये कॉटन वाइट कुर्ता और वाइट धोती वगैरह, वाइट ही और कोई कलर नहीं, आपका भी कह दिया, लेकिन ये कॉटन, कॉटन का नैपकिन, ठीक है। और नैपकिन के बाद आप ऑफर करोगे फूल, तो फूल के लिए ट्रे आती है, छोटी सी प्लेट, प्लेट और ट्रे इंग्लिश ही है, छोटी सी फूल। और फूल भी फ्रेश रखो, चाहे कम हो, ज़्यादा फूल में, मतलब सामर्थ्य के मुताबिक, अगर आपके पास बड़ा सामर्थ्य है तो अच्छे अच्छे फूल लाओ, नहीं तो एक फूल हो फिर भी ठीक है। और फूलों से सज रहे हैं, भगवान फूलों से सजते हैं, फूलों का जब श्रृंगार ये करोगे तो बहुत अच्छा। तो नैपकिन, नैपकिन के बाद फूल, और फूल के बाद चामर, और चामर भी आपकी डीटी के बराबर लाओ, बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा नहीं, डीटी अगर है तो इतनी साइज तो होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं कि दो तीन हेयर हैं और इतना हेयर, ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छा होना चाहिए चामर। मतलब कि चामर भी 400 रुपया से प्लस और माइनस 100 रुपीज़ का होना चाहिए, ठीक है। तो चामर, सुंदर चामर के बाद पंखा, पंखा भी आपके डीटी के साइज के मुताबिक, इतना साइज हो तो अच्छा है। तो ये पराफनेलिया, और एंड में कांस्य, एंड में संग फूकना, और वो संग फूकने के लिए, धोने के लिए अत्तर, और आचमन भी, आचमन कप रखना चाहिए हमेशा, आपके मंदिर में आचमन कप होना चाहिए। तो एनीवे सिखाएंगे आपको आगे, आचमन कप भी जरूरी है। तो आइए, आरती कैसे करनी चाहिए। तो आरती, ब्राह्मण जो नहीं है तो मूल मंत्र आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण है उनको मूल मंत्र, हर दीटी, हर मूर्ति का मूल मंत्र होता है। तो ये मूल मंत्र का उच्चारण करने के बाद आप पराफनेलिया, वो चीज़ें आप उनको ऑफर कर सकते हैं। तो पहले संग फूकना है तीन बार, और फूकते समय सपोज ये मूर्ति है तो मैं ऐसे खड़ा रहूँगा, ऐसे ऐसे मेरा बाया मूर्ति की ओर, और संग फूकूंगा। तो ऐसे पोजीशन भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि उनके सामने फूकने लगो या कहीं और। तो ऑल्टर थोड़ा मंदिर से बाहर या मंदिर की, सपोज ये मंदिर है तो यहाँ हाँ 2 फीट छोड़ के संग फूकने का मेरे ख्याल से ये मंतव्य है कि आप घोषणा कर रहे हो कि आरती होने जा रही है और भगवान पधार रहे हैं, उनकी पूजा होने जा रही है, सब आ जाइए या तो सब सावधान हो जाइए वगैरह। तो संग फूकने के बाद आप शुरू करोगे इंसेंस से, तो गैस लाइटर और इंसेंस एक या तीन, 5 की जरूरत नहीं है, 5 मंदिरों में कभी कभी करते हैं। तो एक अगरबत्ती आप उसे अगरबत्ती के आप ऐसे टेबल बनाओ, यहाँ अगरबत्ती लिखो और यहाँ 3 कॉलम बनाओ और अगरबत्ती, तो एक में लिखो सर, पहले कहाँ से शुरू करोगे, पाँव, बाद में नाभि कमल, नाभि, बाद में फेस और बाद में सारा शरीर, ये 4 चीज़ें लिखो और उसको कॉलम बना दो, कॉलम पंक्ति बना लो, वर्टिकल पंक्ति, ओके। इंसेंस बाद यहाँ इंसेंस लिखो, पंक्ति यहाँ पहले पाँव में इंसेंस 4 बार, है ना, 4 बार, और बाद में नाभि कमल 2 बार, और सर पे नहीं, और सारे शरीर पे 7 बार, ऐसे आपको आर्टिस्टिकली घुमाना है, ठीक है, जैसे हो तो पाँव में 3 बार ऐसे, और हाथ भी आपका ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे आर्टिकल, ऐसे ऐसे पाँव में 1, 2, 3, 4, बाद में नाभि कमल 2, बाद में सारा शरीर ऐसे 3, 7 बार। तो ये इंसेंस ये हो गई, ऐसे पकड़ो, ऐसे हाथ में पकड़ो ऐसे। और ये आरती का अर्थ क्या है कि कोई आपके घर आएगा तो आप उन मेहमान का स्वागत करते हो ना, पाँव प्रक्षालनम, बाद में खिलाओगे, बाद में उनको खिलाते समय पुराने जमाने में पंखा झेलते थे और पानी भी उनको देते, पहले हाथ पांव धुलाते थे, और ये सब स्वागत क्रिया है, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, ये भाव है कि भगवान का स्वागत हो रहा है। तो इंसेंस कुछ सुगंधीदार द्रव्य, कोई आता है घर में तो हम इंसेंस सब जगह रख लेते हैं ना सुगंध के लिए, तो इंसेंस ऑफरिंग। बाद में इंसेंस के बाद घी लैंप, तो घी लैंप भी पकड़ोगे आप तो उसमें जो होता है ये बराबर व्यवस्थित पकड़ना होगा, ऐसे जैसा आपका लैंप घी लैंप हो वैसे पकड़ोगे। और बाद में इंसेंस जो लिखा है आपने 4, 2, 3 सर सारा फेस 3 और सारा शरीर 7 टाइम ऐसे। तो ये घी लैंप समझ में, और घी लैंप भी आप बराबर धीरे 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 ऐसे ऐसे धीरे 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 ले जाओगे, धीरे धीरे ऐसे सर तक ऐसे। इसका मतलब है पुराने जमाने में लाइट नहीं थी तो भगवान के दर्शन करने के लिए ये क्रिया है, सारी मूर्ति का दर्शन, पहले चरणों का दर्शन करो घी लैंप से, बाद में नाभि कमल, बाद में उनका फेस, बाद में सारे उनके वपू का दर्शन। तो ऐसे धीरे 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 मेडिटेटिवली है ना। तो ये घी लैंप हो गया, और घी लैंप के मतलब बाद में पानी, तो पानी उनके सर से ऊपर 7 बार ऐसे 7 बार काउंसल से करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं काउंसल ऐसे सर पर, ऐसे सर से थोड़ा ऊपर पानी हर डीटी, और डीटी का भी सीक्वेंस लिख लो, कृष्णा राधा रानी, कृष्ण का सारा हो गया, बाद में राधा रानी, बाद में लॉर्ड चैतन्य, बाद में नित्यानंद, बाद में तुलसी महारानी, बाद में पंचतत्व, लक्ष्मी नरसिंह देव है तो 3 बार लक्ष्मी, जो मूर्ति एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब जो आप सेवा नहीं कर रहे हो तो उनको 3 बार करना है, ठीक है, 3 बार करके जैसे षट गोस्वामी 3 बार, सब आइटम एवरी आइटम 3 टाइम्स, षट गोस्वामी और सब गुरु परंपरा और प्रभुपा आपके आपके परम गुरु मतलब कि वर्तमान आचार्य के आप अगर शिष्य हो तो प्रभुपाद आपके परम गुरु हुए, तो परम गुरु की और बाद में आपके गुरु की, तो ये दोनों की आरती करना जरूरी है। तो पहले कृष्ण को सारा पानी 7 बार अर्पण किया, तो ये वो पानी निकालना है। क्यों निकालना है कि अभी कृष्ण भगवान की अभी नया पानी मैंने लिया, ये मन में हमें सोचना है कि पानी निकाल दो, इसलिए राधा रानी का, राधा रानी की हो गया, बाद में पानी निकालो, बाद में गौरांग महाप्रभु पानी, नित्यानंद पानी निकालो, तुलसी महारानी 3 बार पानी मत निकालो, और सठ गोस्वामी और जो भी 3 बार करते हो पानी निकालने की जरूरत नहीं है, और बाद में सबका 3 बार वाला पानी निकाल दो। बाद में अगर वर्तमान आचार्य हैं आपके तो फिर प्रभुपाद का सेवा करो 7 बार और पानी निकालो, बाद में आपके जो गुरुदेव हो उनके और पानी निकालो, बाद में वैष्णव और देवी देवताएं जो आरती में आए हैं उनकी उनको 3 बार अर्पण करो, स्पेशली जेंट्स एंड लेडीज 3-3 बार हो गए, तो इस तरह, तो ये सीक्वेंस है। ओके, जितना आप में सामर्थ्य है इतनी भक्ति सेवा करो, अच्छा, लेकिन ये बेसिक्स में सिखा रहा हूँ। कईयों को ये पता नहीं आरती कैसे करनी, बस घुमाते रहते हैं और है ना, तो मेरा फर्ज है कि बताऊँ। बाद में हम कहाँ आए, पानी आए, पानी के बाद नैपकिन, तो नैपकिन सारा होता है, जैसे घी लैंप है वैसे सारा, पाँव में 3 बार, नाभि कमल 2, सर पे 3 और सारा शरीर 7 बार, ये नैपकिन। नैपकिन का अर्थ है आपके पानी से आपने उनको नहलाया, तो उनको पूछना पड़ेगा, तो नैपकिन की ऑफरिंग कर रहे हो आप। नैपकिन के बाद फूल, तो फूल उनके चरण कमलों में फूल 4 बार, ऐसे फूल पकड़ो, ऐसे पकड़ो फूल और ऐसे उनके चरण कमलों में ऐसे करते हुए 4 बार, ठीक है, बाद में राधा रानी 4 बार, चरणों में 4 बस। और जब आप विष्णु तत्व पूरा हो जाए उसके बाद ये फूल उनके चरणों में रखो, पहले कृष्ण के चरणों में रखो, बाद में राधा रानी के चरण में रखो, बाद में गौरांग नित्यानंद वगैरह वगैरह सबको ऑफर कर दो। बाद में जो विष्णु तत्व नहीं है उनको फिर से शुरू करो वहाँ से, जैसे कि सठ गोस्वामी हैं, गुरुदेव वगैरह हैं, तो उनका ऑफर किया हुआ भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, इसलिए विष्णु तत्व को ऑफरिंग करके फूल की पखुड़िया आप उनके चरणों में रख सकते हो। हाँ बोलिए। हाँ एक मिनट, कौन फ्लावर्स, तो फ्रिज में रख लो, दूसरे दिन बाहर निकालो जल्दी से। हैं क्या फूल, तो ये माली को तिलांजलि दे दो, गंदा फ्लावर ला दे, गंदा एक भी फ्लावर अच्छा है कि आप मत चढ़ाओ, उससे भगवान के ड्रेस खराब होते हैं, आपके सब कुछ खराब होता है। हाँ उसका हर्जा नहीं है नेक्स्ट डे का, लेकिन फ्रेश लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि वही गंदा लाए, ज्यादातर तो वही गंदा लाते हैं, उनको हर रोज बोलते रहो गंदा नहीं चाहिए, गंदा मैं छोड़ दूँ, तो वो अच्छा लाएगा, नहीं तो आपके यहाँ ही गंदा डाल के जाएगा। और मेरे कपड़े हर रोज इतने गंदे होते हैं, गंदे फूल हारों से इतने गंदे होते हैं, ये मत करो। ओके फूल तक आए ना, ओके फूल के बाद चामर 7 बार हर मूर्ति को, या तो समय नहीं है तो 3 बार 2 बार जैसे आपको समय मिले उसके मुताबिक चामर आप दे सकते हो, समझे, और चामर दो फिर भी वो भी कला, ऐसा नहीं कि यू नो लगाते रहो और ऐसा नहीं, तो जैसे कि चामर ये चामर तो ये है ना, तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे ऐसे या तो ऐसे करके ऐसे भी कर सकते, आप देखो पुजारी अच्छे अच्छे पुजारी होते हैं ना, तो वो कैसे चामर दुलाते हैं आप देखो, ऐसा नहीं कि ना जैसे पिटाकर ऐसे, और वैसे ही फैन पंखा पंखा भी कहीं पुजारी कहीं और से करते हैं, तो पंखा का अर्थ है कि उनको हवा लगनी चाहिए, ऐसे धीरे से उसको हवा आप उनको सूख दो। और पंखा का समय है गोवर्धन पूजा से लेके शिवरात्रि तक नहीं करना है, गोवर्धन पूजा से शिवरात्रि तक नहीं करना है, बाकी का पंखा झेलना, अमीन पंखा झेलना। चामर बारह मास चामर हमें करते हैं, और बाद में शंख तीन बार। तो ये है आपकी आरती जो सामूहिक हो गया सबका। ओके, आगे मूर्ति पूजा मैं करना चाहूँगा, लेकिन है अभी ओ अत्तर अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो हर एक आरती स्पेशली जो भी सुबह या शाम एक आरती में या दो आरती में आप अत्तर भगवान को ऑफर कर सकते हो। तो अत्तर ऑफरिंग है उनके नाक के आगे, ऐसे पता नहीं एक बार दो बार तीन बार जो भी कर सकते हो, बस थ्री टाइम, हाँ तीन टाइम करो नाक पे और बाद में उनके हाथ पर, है ना डीटी, तो कृष्णा राधा रानी चैतन्य वगैरह वगैरह। तो ये अत्तर हो गया, और अत्तर में भी पीछे फूल जो क्यू टिप्स होती है फूल में लगा देते हैं और बाद में अत्तर सबको देते हैं, जैसे भी हो। और कुछ नैपकिन सारा जैसे घी लैंप का है, 4 2 3 7 बोलो हरे कृष्णा हरे अगर आप हर रोज या तो कभी भी जब भी आप श्रृंगार नया करो अभिषेक और श्रृंगार, तो भगवान कैसे लगते हैं खुद, तो कृष्ण को ये आदत, कृष्ण को राधा रानी को भी दोनों को आदत है कि शीशे में अपना सौंदर्य देखते रहते हैं, स्पेशली राधा रानी। तो जब आप श्रृंगार करते हो तो कैसा श्रृंगार हुआ तो उसका शीशा आप उनको दिखाना चाहिए, हर मूर्ति को जैसे सीक्वेंस में राधा आई मीन कृष्णा राधा रानी चैतन्य, तो शीशा आप रखो अच्छा सा उनके पीछे, सुंदर कपड़े से अच्छा लगे पीछे वाला भाग, क्योंकि लोग पीछे देखते हैं, आगे शीशा और पीछे वाला भाग कुछ सुंदर होना चाहिए, ऐसा शीशा भी रख सकते हो और शीशा दिखा सकते हो। और कोई
उसमें अपना चेहरा नहीं देखते,
हाँ इट इज फॉर हिज यूज। और
घंटी
आप तय करना है, जैसे मंदिर में फूल आरती होती है और तीनों मूर्ति हैं तो आपको 25 मिनट्स लगती है, 25 मिनट, लेकिन आपकी मूर्ति कम है तो कम टाइम आप सेट करो कि 5 मिनट 10 मिनट आरती का। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर शाम का टाइम सबके लिए एक रखो तो अच्छा है, लेकिन कोई सेट नियम नहीं है। घर की मूर्ति के लिए, घर की मूर्ति लिखो, घर की मूर्ति गृहस्थ का स्केड्यूल फॉलो करती है। हिंदी बोलो क्या हुआ, पालन है घर की, घर के भगवान गृहस्थ का स्केड्यूल कार्यक्रम नियम अनुसार चलते हैं, नियम अनुसार। तो उसका मतलब ये नहीं कि हर रोज आप बदलते रहो और हर रोज उल्टा सुलटा होता रहे, लेकिन कोई अनिवार्य संजोगों में आप इधर उधर करो, तो जैसे कि यहाँ आना है आपको और घर मूर्ति सास को लेके देके आए और किसी को देके आए, तो या अलग अलग ऐसे थोड़ा उधर उधर कर इधर उधर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं।
अपने खाने का नियम बना कर रखते हैं, सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर को लंच चाहिए, रात को खाना चाहिए।
ठीक है, आप स्केड्यूल आपका हो सके इतना फॉलो करो, बाकी का भगवान को बोलो कि मेरा स्केड्यूल आज थोड़ा सा गड़बड़ है, इनका ज्यादा होता है सैटरडे संडे सुबह का गड़बड़, लेकिन करके जाती है। तो और कोई सवाल? हाँ हाँ, तो राधा रानी का भाव रखो, लड्डू गोपाल में राधा रानी का भाव रखो, नहीं राधा रानी में, आई मीन कृष्ण मूर्ति लड्डू गोपाल में राधा रानी मौजूद है, ऑलरेडी है, दोनों साथ में, ऐसा भाव रखो। एक मिनट, दूसरी बात की जो आचमन कप होता है, तो हर आर्टिकल, हर आर्टिकल मतलब हर चीज जो आप ऑफरिंग करोगे, तो वो तीन बार अपने हाथ ऐसे धोना है, बाद में तीन बार वो पानी से पवित्र करना है हर आर्टिकल, और जब फैन और चामर रखते हो तो उनको भी प्योरीफाई तीन बार पानी डाल के आप रख सकते हो, वापस स्टोर कर सकते हो। तो ये आचमन, और आचमन करने की पद्धति भी सिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपके सवाल, कोई सवाल पीछे?
मैं एक बार प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान के लिए भगवान को बच्चों की तरह भाव देना चाहिए। मुझे बस वहाँ क्लियर नहीं हुआ अभी।
हाँ, तो ये आपका बच्चा होगा आपकी गोदी में, तो आप बाहर कोई गांव जा रहे हो आउट ऑफ टाउन, तो वो भाव से उनको लेके जाओगे कि हियर दादी, हियर नानी, टेक केयर करो, ऐसा नहीं होता ना, उनको भाव होता है मम्मी को मेरा बच्चा है, मैं लेके जाऊंगी, मैं देखभाल करूंगी, है ना, किसी के पास छोड़ के जाती है? ज़्यादातर तो नहीं जाती, जाती तो हैं, केयर ज़्यादा करते हैं, तो बच्चों की जितनी केयर करते हो वैसे डीटी की केयर करनी चाहिए, ये भाव है। बोलिए।
जो भी डीटी की वर्शिप कर रहे हैं, वो डीटी की ऐसे ही केयर करनी चाहिए जैसे किसी बच्चे की केयर।
हाँ, ये भाव है। और आप?
मेरी तो पर्सनल प्रॉब्लम है।
हाँ, तो बाद में क्यों ना डिस्कस करें?
नहीं नहीं, ये पर्सनल प्रॉब्लम डीटी से रिलेटेड है।
हाँ बोलिए।
हो सकता है बाकियों के लिए समझ लो। मैंने इमोशनल होकर के पहले बहुत सारी डीटीज विष्णु तत्व में थी।
मुझे दे दो।
ओके, सबकी है। हाँ, अलग अलग। हाँ, कृष्णा की पहले, बाद में राधा रानी की। ये पहले एक यहाँ बीच में कोई था, एक मिनट। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको जो भाग करो वो भाग ऑफर की भोग लगाया है कि नहीं लगाया है, वो भी आप इनका कंसीडरेशन करो, मतलब उनको, चलो ये चारों भाग भगवान को भोग लग गया, ऐसा भी कह सकते हो, या तो एक ही भाग भोग लगा, तीसरे तीन भाग बाद में लगेंगे, ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये आपके, आपको तय करना है, ठीक है। हाँ बोलिए ईश्वरी। किसकी? जगन्नाथ जी की, जैसे राधा कृष्ण की करते हैं वैसे
अच्छी तरह
से। हाँ ओके, उसमें अभिषेक नहीं करते हुए आप अगर पेंट अच्छा है तो गीला, थोड़ा सा बहुत कम गीला सा कपड़े से आप उनको हर रोज साफ कर सकते हो या अभिषेक कर सकते हो, और श्रृंगार सब विधि तो एक ही है। आप बोलिए क्या कह रही है। हाँ, और एल्स ये माता जी बता रही है कि जो अभिषेक करना है तो पानी, बोल में से पानी लो और उनको अभिषेक करते हो ऐसे कंसीडर करो, विचारो, और बाद में वो पानी दूसरे बोल में छोड़ दो, फिर से पानी लो, उनको नहलाओ चिंतन से, और बाद में वो पानी छोड़ दो। उनका अभिषेक नहीं होता क्योंकि मटेरियल अलग है, और सेवा तो सेम है। ठीक है, और कोई सवाल?
लक्ष्मी नरसिंह भी ऐसे करते हैं?
हाँ ऐसे बिल्कुल, विष्णु तत्व सब एक। अच्छा अभी आचमन आपको, हाँ बोलिए।
मेरा क्वेश्चन है महाराज, कितने डिटीज रखने?
कितनी डिटीज रखें?
क्योंकि हम देखते हैं कईयों के घर में लड्डू गोपाल भी है, ये भी है, तीन गोपाल, पांच राधे कृष्ण।
ओके, जब हम
एक 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 का ही मुझे ध्यान देना है।
हाँ।
और जो दूसरे देवी देवता भी जो घर में है।
हाँ।
उनको भी कैसे रखना है, बगल में रखना है क्या?
मैंने बता दिया, आप गए थे ना, मैंने बताया ना। जल ये चरणामृत है, तो उनका थोड़ा पान करो, बाकी का जल आप पेड़ में डाल सकते हो, वैसे तो नदी में डालना चाहिए, या तो कुछ विसर्जन तुलसी महारानी, अगर नींबू बहुत उपयोग करते हो नींबू का, तो तुलसी महारानी को भी सीमित, क्योंकि दूसरा द्रव्य तुलसी महाराज महारानी को माफक आए ना आए, तो पेड़ में या तो कुछ विसर्जन। हम नहीं नहा सकते, हम नहीं नहा सकते, नहीं नहीं। ओके ठीक है, बाद में जिनको सवाल है प्राइवेट मिले मुझे सेशन के बाद, तो आचमन कम से कम इतना तो सिखाई दो, समय हमारे पास ज़्यादा है नहीं, आचमन का कम से कम सिखा देता हूँ। तो ये आचमन कप है और आचमनी, ये आचमनी है, तो आचमनी से पानी लो और छोड़ दो, मतलब कि मैं हाथ धो रहा हूँ ऐसे,
पानी
भी मैं कर रहा हूँ वैसे, देख लो, लेफ्ट में आचमनी पकड़ो, राइट हैंड वॉश करो तीन बार, ठीक है, बाद में कुछ नहीं, वॉश करना है, बाद में ये हाथ में आचमनी रखो, इनको तीन बार वॉश करो ऐसे, ठीक है, बाद में अभी मंत्र के साथ राइट हैंड में पानी लो और सीप करना, यहाँ से ऐसे करोगे तो छूत अछूत हो जाएगा हाथ, तो ऐसे मुंह में लगाना नहीं हाथ, है ना, पानी मुंह में चला जाए ऐसे ऐसे, नहीं तो फिर आपको हाथ धोना होगा, वैसे तो धोते हैं पुजारी लोग, तो पानी लो, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, वॉश योर हैंड गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, तो ये मंत्र लिख लो, ओम केशवाय नमः, ओके, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवे नमः।
तिलक मंत्र क्या है ये?
हाँ, वही सीक्वेंस है, ओके, तिलक मंत्र का सीक्वेंस है, ठीक है, सबने लिख लिया, तो ये आचमन कम से कम आचमन, और बाकी का श्रृंगार कैसे करना चाहिए, अभिषेक कैसे करना चाहिए, ये अगली बार आपको सिखाएंगे, ठीक है, अगली शिक्षा में, तो कृष्ण चैतन्य प्रभु आपको सूत्र समझाएंगे, और ये सब दूसरे भी सब कुछ न कुछ आपको स्टडी करवाएंगे क्लासरूम में। तो अभी कृष्ण चैतन्य प्रभु भागवत, लाइट ऑफ भागवत, ओके, जो भी आप, यू आर एमसीइंग, सो एमसीइंग। मेरे आश्रम में आप सब जो दीक्षित या प्रोस्पेक्टिव भक्त हैं आके कभी भी ठहर सकते हैं, वहाँ के कोई ये रूल है कि आओ खाओ और पाओ, बनाओ नहीं, बना सकते हम, अगर आप आगे से कह सकते हैं तो मैं और माता जी बना सकते हैं आपके लिए, अगर अगर हम नहीं नहीं बना सकते या कुछ भी हैं तो आप ही बना सकते हो, ऐसी बात नहीं, अभी खुला है किचन, कोई भी कभी भी बना सकता है, वो तो बात है ही नहीं, लेकिन हम भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो आश्रम में आने के लिए मिनिमम वन रूल मैंने ये तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन ये रूल है कि आप परमिशन के बिना नहीं आ सकते। परमिशन ये सब लीडर जो खड़े थे उनकी या कृष्ण चैतन्य प्रभु की, मेरी या माता जी की, इन इनमें से एक की परमिशन चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ कई लोग आके ठहरते हैं और कई कई विटमनाएँ होती हैं, तो इसलिए ये रूल बनाया है। तो आप शायद अपॉइंटमेंट ना ली हो कि भी मैं आने वाला हूँ, तो आप दरवाजे पे आके फोन कर दो इनमें से किसी को, और राधाचरण को फोन पकड़ा दो कि यस इनको आप रख सक, या ये हमारे हमारे हमारे, तो टिक मार्क चाहिए। ठीक है, तो ये व्यवस्था के लिए किया है आप सबकी, हमारी सबकी। अगर आगे से बताओगे तो कुछ दिनों साफ सफाई ज़्यादा मिलेगी, है ना, नहीं तो हम तो यहाँ ज़्यादा रहते नहीं हैं, तो जो पहले वाला आया और दूसरे वाला आएगा तो साफ सफाई कैसी है क्या है पता नहीं। अगर आप साफ सफाई करो आके और करके जाओ आपके पीछे, तो ये नियम बहुत एप्रिसिएबल है। लेकिन जब हम होंगे हम दोनों, तो हम तो साफ सफाई आपके रूम की करके ही रखेंगे जब आपने अपॉइंटमेंट लिए हैं, तो वो बात नहीं है। ठीक है।